प्रवचन सार, प्रवचन सुधा, लेक्चर नंबर 665। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोए सर्वसाहूं। सुर असुर नरपति वंदने प्रविनष्ट घाति कर्मने प्रणमन करो धर्मकर्ता तीर्थ श्री महावीरने वैशेष तीर्थंकर ने सिद्ध शुद्धास्तित्व ने मुनि ज्ञान दुग चारित्र तपवीर्या चरण संयुक्त ने ते सर्वने साखे तथा प्रत्येक ने वंदुवरे हो मनुज क्षेत्रे वर्तता अरहंतने अरहंतने सशिद्धने यो नमस्करण करिये रीते गणधरने अध्यापकोने सर्व साधु समूहने तसुशुद्ध दर्शन ज्ञान मुख पवित्र आश्रम पामिने प्राप्ति करु साम्यने देनाति शिव प्राप्ति वने। आचार्य श्री कुंकुन भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक परमागम ग्रंथ है, उस पर अमृतचंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका टीका लिखी हुई है तथा जयसेनाचार्य ने तात्पर्य टीका लिखी है। इन पर गुरुदेव श्री कांजे स्वामी के जो प्रवचन हुए वे प्रवचन सदा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। उसमें से आठवें पुस्तक के पृष्ठ संख्या 65 पर हम आ गए, 65। पहली लाइन से पढ़ेंगे हम यहाँ से। अज्ञानी अनादि काल से राग और द्वेष को वशीभूत होकर जहां तहां राग द्वेष मोह किया, ये किया वह किया ऐसा परिणाम करके शुभाशुभ भाव रूप परिणमित होता है। शुभ और अशुभ भाव से जीव पर्याय में परिणमित होता है, तब अन्य योग द्वारों से प्रविष्ट होते हुए लो आत्मा का प्रदेश कंपते हैं, प्रदेश कंपते हैं उसे योग कहते हैं, उसके द्वारा प्रविष्ट होते हुए पुद्गल कर्म पुद्गल स्वयमेव कर्म का पुद्गल अंदर प्रवेश करता है, स्वयमेव विचित्रता को प्राप्त ज्ञानावरणादि भाव रूप परिणमित होते हैं। विचित्रता तो नहीं, विविधता अलग अलग प्रकार के ना, आठ प्रकार है, मूल प्रकृति आठ प्रकार की है, उसके भेद करेंगे उत्तर प्रकृति और 148 प्रकार की, और केवल ज्ञानी ने तो कितने प्रकार के देखे, असंख्यात लोक प्रमाण भेद देखे उन्होंने, तो ये स्वयं उस रूप परिणमित होते हैं। ज्ञानावरणादि पर्याय रूप पुद्गल अपने से परिणमित होता है कि नहीं, उसमें यह मूल गाथा में यहाँ टीका में भी लिखा है, योग द्वारों से प्रविष्ट होते हुए कर्म पुद्गल स्वयमेव विचित्रता को, विचित्र का क्या क्या अर्थ है, एक समय में आठ कर्म बनते हैं, भाव एक, शुभ अशुभ आदि जो कोई होगा, वो एक परिणाम, जीव का एक समय में एक परिणाम, और आठ कर्म बनते हैं, कह के ऊपर बिंदी लगा लो, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, एक समय में बनते हैं ये। तो चार नाम लिए, फिर कौन से रहेंगे, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। तो कहते हैं कि ये वेदनीय को तीसरे नंबर पर क्यों लिया मालूम है? नहीं, ये कर्णनियोग के जो ये पद्धति है, वेदनीय का नाम तीसरे पर लेते, ज्ञानावर, दर्शनावर, वेदनीय, फिर मोनीय, फिर आयु, नाम, गोत्र और लास्ट में अंतराय। और जब घाती अघाती भेद करेंगे तो ज्ञानावर, दर्शनावर, मोनीय और अंतराय, और फिर वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र।
लेकिन ऐसा क्यों कहा?
बंटवारा नहीं, बंटवारा तो वेदनीय में मैक्सिमम जाता है, सबसे मैक्सिमम वेदनीय में जाता है, फिर मोनीय में जाता है, फिर ज्ञानार दर्शन अंतराय में इक्वल जाता है, नाम गोत्र में इक्वल जाता है, और लास्ट वाला पोर्शन आयु में जाता है। वो बंटवारे के हिसाब से भी नहीं आता है, वो ऐसा ही है, ज्ञान दर्शन में तो स्वभाव है, फिर वेदनीय की मुख्यता है वो सुख दुख की, इसलिए उसको पहले लिया है हमेशा तीसरे नंबर पर। कभी कभी गाथाओं में भी इसको तृतीय कर्म कह देते हैं, यानी नाम नहीं लिखेंगे उसका, वेदनीय नहीं लिखेंगे, तृतीय कर्म कहेंगे, नहीं वेदनीय। ये कर्णानियोग की कुछ विशेष पद्धतियां होती है। क्या कहते हैं, देखो ये नया पैराग्राफ नहीं, तीसरे लाइन, तीसरी चौथी लाइन पर आए। तो कहते हैं कि भिन्न भिन्न परमाणु की ऐसी पर्याय क्यों हुई? भाव तो एक है, शुभ या अशुभ होता है, और आठ कर्मों में भिन्न भिन्न प्रकृति, भिन्न स्थिति, भिन्न भिन्न अनुभाग, भिन्न भिन्न प्रदेश की संख्या, परमाणु की संख्या क्यों हुई? अभी आपने बताया ना बंटवारा, बंटवारा ने एक समय प्रबद्ध जो लिया तो आठ कर्मों में इक्वल तो नहीं जाते, मालूम है बंटवारा कैसा होता है? पहले वो आवली के असंख्या विभाग से भाग देते, जो कोई अनंत की संख्या है, एक भाग अलग रखते हैं, और जो बहुभाग जो आया उसको इक्वली सात या आठ जितने बनते उसमें इक्वली जाता है, फिर जो एक भाग बचा फिर उसको उसी भागार से भाग देते, फिर एक भाग बचाओ और फिर उर्वरित जो है बहुभाग वो वेदनीय को देना। हाँ, अभी जो एक भाग बचा उसका फिर बहुभाग एक भाग करना, वो बहुभाग जो है मोनीय को देना, फिर जो एक भाग बचा वो ज्ञानावरण, उसका बहुभाग ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय को इक्वल देना, एक बहुभाग के तीन भाग करके, फिर जो एक भाग बचा, आयु नहीं बनती है तो नाम गोत्र में जाना जाएगा, और आयु बनती है तो वो एक भाग का बहुभाग नाम गोत्र में इक्वल करके देंगे, और फिर लास्ट वाला जो एक भाग है वो आयु को देंगे। इस तरह से प्रदेशों का बंटवारा, परमाणुओं की संख्या का बंटवारा होता है, यही कहते हैं ना, भिन्न प्रकृति, भिन्न स्थिति, भिन्न अनुभाग, भिन्न प्रदेश की संख्या, परमाणु की संख्या क्यों हुई? क्योंकि अनुभाग में भी जो कुछ है उल्टा पुल्टा भी होता है ना बहुत सारा। ये उत्तर प्रकृतियों में बंटवारा, उसके तो नियम और अलग है ज्ञानावरण के पास में कैसे जाएंगे, नामकर्मों में कैसे जाएंगे, अंतराय में कैसे जाएंगे, उसके सारे नियम है। अपने शिविर में हुआ था ये, तो कहते ये ऐसा क्यों होता? कहते अपने योग्यता से हुई, उपादान उसकी योग्यता है। ओहो हो, यहाँ तो थोड़ा काम करे तो माने कि मैंने किया, मैंने ऐसा दान दिया, मैंने ऐसी दया पाली, मैंने ऐसा मकान बना दिया, मैंने ऐसा किया, मूड है, असत्य दृष्टि, पाप दृष्टि का सेवन करता है मूड। हाँ, यानी वो तो मान लेता है, वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। ज्ञानावरणादि ज्ञान को आवरण करने में निमित्त रूप, हाँ, दर्शनावरणीय, अंतराय, दानांतराय, भोगांतराय, वीर्यांतराय आदि, आयुष्य में नारकी, मनुष्य, देव आदि का आयुष्य इत्यादि, साता असाता इत्यादि, ये वेदनीय के भेद हो गए। नाम कर्म में यश अपयश इत्यादि, ये दो ही नाम बता दिए, परंतु उसमें तो बहुत सारी है ना, नाम कर्म के 93 प्रकृतियां, यानी उसमें गति जाति शरीर बंधन संगात वगैरह बहुत सारे भेद हैं। गोत्र में ऊंच नीच कर्म की पर्याय यानी उच्च गोत्र और नीच गोत्र, उस भाव रूप परमाणु अपने से परिणमित होता है, आत्मा उसका कर्ता हर्ता नहीं। लोग आठ कर्म की पर्याय होती है उसका आत्मा कर्ता नहीं ऐसा कहते हैं। होशियार आदमी व्यापार का कर्ता होता है कि नहीं भाई? मुमुक्षु ने कुछ कह दिया, पूज्य गुरुदेव जी कहते धूल में भी होशियार आदमी धंधा नहीं करता। कम अक्कल वाला भी पुण्य के कारण 5-10 लाख पैदा करता है और बहुत बुद्धिशाली को महीने में 200 रुपये कमाने में पसीना उतरता है। ऐसा भी देखने में आता है, कोई फर्स्ट क्लास फर्स्ट है, मेडिकल डॉक्टर्स का भी ऐसा देखने में आता है, अन्य भी सब जगह देखते हैं हम, कहीं कहीं बहुत होशियार है परंतु पैसा कमाने के बारे में उसको कम पैसा मिलता है, यानी उसके पैसा कमाने में तो इतना होशियार नहीं होता है ऐसा कहेंगे, पर होशियारी से मिलता ही नहीं ये बात है। यहाँ लिखा है ना, उसमें धूल में क्या है, वह तो देखो किससे मिलते, वह तो पूर्व का पुण्य और पाप का रजकण जैसा पड़ा हो वैसा पकने का काल आ जाए, यानी उसकी स्थिति पूरी हो जाएगी। अभी उदय का काल है, पकने का काल यानी उदय का काल आ जाए, वैसा संयोग में दिखने में आए, वो भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उससे वो मिलता है ऐसा भी नहीं, क्योंकि उसके परमाणु जुदे, उसके परमाणु जुदे, संयोग के परमाणु जुदे और कर्म के जुदे, पर वैसा वो निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा पाया जाता है। उसमें आत्मा में वह चीज कहाँ घुस गई है, वह तो पर में है, वो घुस गई वाला घूर हस्व करना। मुमुक्षु का कुछ सुनाई नहीं दिया, दिखा पूज्य गुरुदेव जी कहते अभिमान घुस जाए, रस्व कर देना अभिमान, यानी आत्मा में क्या घुस गया तो अभिमान कहते, क्योंकि वो उसकी पर्याय में है। हाँ, बाकी चीज तो पर चीज है ना, पर पदार्थ है, वो तो आत्मा से छूते भी नहीं है, तो अभिमान हम लक्ष्मी वाले हैं, हम निर्धन है, दीनता करता है, पैसा के कारण अभिमान होता है, अभिमान खुद करता है। अरे यानी पैसा उसको अभिमान नहीं करा रहा है, जीव स्वयं अभिमान कर रहा है, पैसा तो जड़ है, वो क्या करे दूसरे को, अभिमान खुद करता है। अरे मैं तो आत्मा हूँ, धर्मी तो ऐसा जानते हैं कि मैं तो आत्मा हूँ, चक्रवर्ती का 6 खंड का राज हो, भरत चक्रवर्ती भगवान ऋषभदेव के पुत्र, उनको 6 खंड का राज था, 96,000 स्त्रियां, 96 करोड़ पैदल था, वो स्त्रियां वाला स्त्री रस्व, वह मैं नहीं, मैं तो आत्मा हूं, मेरी चीज में तो शांति और आनंद पड़ा है, यह शरीर यह स्त्री आदि तो पर चीज है, मेरे में है नहीं, मेरी अंतर आनंद चीज में तो पुण्य या पाप का नया भाव होता है, वह विकृत भाव भी मेरी चीज में नहीं, मेरी चीज यानी वो जो कायमी स्वभाव भाव वह मैं हूँ, जिसको हम जीव तत्व कहते हैं, और ये जो पुण्य पाप के भाव तो असर तत्व, वो तो जुदे है मेरे से जुदे है, नहीं वो विकृत भाव भी मेरी चीज में नहीं, मेरी चीज में तो सिद्ध पद प्राप्त हो ऐसी शक्ति पड़ी है। जो शक्ति में पड़ा है वही तो पर्याय में व्यक्त होगा, तो सिद्ध में जो व्यक्त हुआ है वो कहाँ से आया, स्वभाव में था वही व्यक्त हुआ, तो मेरे में भी ऐसा स्वभाव है, सिद्ध वो भी जीव है मैं भी जीव हूँ, उन्होंने वो व्यक्त किया, मेरे में व्यक्त करने की ताकत पूरी पड़ी है, पर उस पूर्णपणे है ना, हाँ उसका लक्ष्य करेंगे तो उसमें से पर्याय प्रकट होगी, परंतु कभी उसका लक्ष्य ही नहीं किया, कभी उसके बारे में सोचा तक नहीं, ये कह रहे, समझ में आया, ऐसी दृष्टि हो तब सम्यक दृष्टि और धर्म कहने में आता है। यहाँ तो अज्ञानी क्षण क्षण में जहाँ तहाँ ऐसा करो ऐसा करो ऐसा बोलो ऐसा करो बोलते हैं, व्यवहार से तो कर सकते हैं कि नहीं, व्यवहार से तो कर सकते हैं कि नहीं, क्या करते हैं यानी कहते भी है, अरे व्यवहार से तो करते हैं ना हम, व्यवहार से तो करते हैं ना, व्यवहार से कर सके, मुमुक्षु कहते बोला ए रीते, ऋषि कहते बोले वह जड़ की भाषा है, उसमें आत्मा में क्या आया। यहाँ तो कहते हैं कि वेचनी कर वेचनी, जिसका हिस्सा जिसको आवे उसको सौंप दे। तेरा पुण्य पाप का हिस्सा तेरे में आया है, भाव करे वह तेरे में आया है, और कर्म की रचना कर्म के हिस्से में आया है। वह रचना तेरे अधिकार की बात नहीं, और तेरा शुभाशुभ परिणाम कर्म से होता नहीं। वहां पर भी क्या करे, कर्म पुराने कर्मों का उदय ना, इसलिए ऐसे भाव हो रहे। तो कहते वो कर्म से नहीं हो रहा है, तू स्वयं कर रहा है, उस कर्म का हिस्सा तेरे में नहीं। तुम जैसा शुभाशुभ भाव करते हो ऐसा कर्म रचकण अपने से बनता है, अपने से नहीं उसके स्वयं से, कर्म स्वयं उस रूप बनता है, उसमें तेरा हिस्सा नहीं और तेरे परिणाम में कर्म का हिस्सा नहीं। ये जो स्वतंत्रता है प्रत्येक द्रव्य की, वो ख्याल में लेनी है, परंतु मान्यता में क्या है, सब उल्टा पुल्टा कर दिया। किसी अन्य के कारण अन्य का कार्य होता है, यही मान्यता चालू है। ऐसी जब यथार्थ समझ और श्रद्धा हो, तब पर की कर्ता बुद्धि छूटकर दृष्टि पर से उठकर, यदि ये ऐसी ये निर्णय पहले होना चाहिए। तो यथार्थ समझ और श्रद्धा हो तब, तब पर की कर्ता बुद्धि अपने आप छूट जाएगी, दृष्टि पर से उठकर अपने आत्मा में दृष्टि पड़ती है, तो पुण्य पाप के परिणाम का कर्ता भी मैं नहीं, तब जाके ऐसा होगा। जब स्वयं की दृष्टि होगी तो उसका मैं कर्ता नहीं हूं ये बात ख्याल में आ जाएगी। तब तक तो अज्ञान अवस्था में तो उसका कर्ता होकर ही उसको कर रहा है, क्योंकि दूसरा कुछ कर ही नहीं रहा है वो। तो पुण्य पाप के परिणाम का कर्ता भी मैं नहीं, कमजोरी से निमित्त के अधीन होकर होता है। क्या कहा, निमित्त नहीं हो कर्मों का उदय, ये स्वयं उसके वश होता है, कर्म उसको कुछ नहीं कराता। स्वभाव के अधीन होने वाली ताकत में वह पर के अधीन होने की ताकत वाला तत्व मेरा नहीं, ऐसी दृष्टि हो तब उसे सम्यक दर्शन धर्म की पहली दशा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वभाव के अधीन वाले होने ताकत है मेरे में, पर ये पर के अधीन होने की ताकत वाला तत्व मेरा नहीं है। पर के अधीन होने वाला तत्व कौन सा है, वो आश्रव बंध वाला, वो मेरा तत्व नहीं है। ऐसी जब दृष्टि हो जाएगी, ये मान्यता ऐसी हो जाएगी, तब पर्याय में तो पुण्य पाप हो गए, पर मान्यता में क्या है, ये विकार जो है वो मेरे से जुदे है, वो मेरी चीज नहीं है, तब उसे सम्यक दर्शन धर्म की पहली दशा कहते हैं, उसे धर्म की पहली दशा कहते हैं। वो भी आता है ना, वो प्रथम सीढ़ी चढ़ाला में बताया उसको, चारित्र व्रत और नियम बाद में होता है। क्या कहते हैं, और लोगों को ऐसा लगता है कि मैं चारित्र धारण को, चारित्र किसको समझता है, ये बाह्य मुनि वेश धारण करना, इसी को चारित्र समझता है। चारित्र तो अंतरंग की स्थिरता है, स्वरूप में चरना रमना लीन होना, वो चारित्र है। परंतु इसको किसको समझता है चारित्र, ये बाह्य में मैं कुछ व्रत अंगीकार करूं, मुनि जैसा सारे वो उनकी दिनचर्या बनाऊं तो मैं आगे बढ़ा, मैंने चारित्र अंगीकार किया, ऐसा लगता है। तो कहते हैं वह तो बाद में होता है, तो वो तो होना है ना, तो मोक्ष मार्ग में तो होगा ही, परंतु ये उतावल इतना हो गए तो समय दर्शन का पता नहीं है, वस्तु स्वरूप का पता नहीं है, निमित्ताधीन दृष्टि पड़ी है, और बाह्य में कुछ व्रत अंगीकार करता है और मानता है कि मुझे मोक्ष चाहिए, इसलिए मैं ये प्रयत्न कर रहा हूँ। तो कहते यह सम्यक भाव होने के बाद चारित्र होता है, और जिससे भान नहीं उसे कुछ धर्म ब्रह्म होता नहीं, अरे धर्म की शुरुआत भी नहीं होती उसको। यानी जो मनुष्य बहुत दुर्लभ है कहकर वो जो करने जा रहा है, तो उल्टा हो रहा है ना, उसका मार्ग ही बंद कर लिया अपने आप स्वयं ने। इससे यह निश्चित हुआ कि कर्मों की विचित्रता यानी विविधता का होना स्वभावकृत है। लो ओहो हो, ज्ञानावरणीय क्या होता होगा, वह सूक्ष्म रचकण है, जैसे यह स्थूल धूल है मैसूब समझते, मैसूब नहीं होता, मैसूब मिठाई, मैसूर कहते ना वो मैसूब कहते हैं। मैसूब में चना का आटा पतला होता है, पतला, और मगज के लड्डू का चना का आटा सूल होता है, करकरा, उनको सब पता है, दोनों के आटे में फर्क है। आटा नहीं समझते, मैसूब में आटा है वह आटा भिन्न है, पतला आटा होता है यानी एकदम फाइन होता है, और एक मगज कहते हैं ना मगज, उसका आटा जाड़ा होता है। ऐसे शरीर होने के परमाणु जो है वह स्थूल से होता है, मगज के आटे जैसा, और अंदर जो कर्म होते हैं जड़ कर्म, वे मैसूब के आटे जैसा बारीक परमाणु है। ये क्या कहना चाहते हैं, आहार वर्गणा से ये कर्माण वर्गणा अत्यंत सूक्ष्म है, वो तो पांच में से ये पहली है। आहार वर्गणा से आगे वाली आहार है, तेजस है, भाषा है, मनोवर्गणा और कर्माण वर्गणा, आगे आगे वाली वो तो सूक्ष्म सूक्ष्म है, तो कर्माण वर्गणा सबसे पांचों में से अत्यंत सूक्ष्म है, तो बारीक परमाणु, उससे वहां मैसूब होता है यानी कर्म होता है, आत्मा से नहीं, वह सूक्ष्म है। और ये परमाणु ही उस रूप परिणमित हो रहे हैं, आत्मा ने उसमें कुछ नहीं किया है। औरतें भी मैसूब करना हो तो चने का आटा बारीक पीसती है। हलवा का दो प्रकार होता है कि नहीं, हलवा होता है शू केवा ओरमू, ओरमू ओरमा ने लापसी ना जाड़ा कटका टुकड़ा है, ने पहली लापसी हलावी ने करे छे ने, ये घऊ नो लोट पात्र हो, झीणो हो, ये कंसार कहवा लो, અને પેલું શું કહેવાય ઓરમું, બંનેના લોટમાં ફેર, વૈસે શરીર બને ઉસ રચકણ મેં ફર્ક હૈ, ઓર અંદર કર્મ બંધે ઉસ રચકણ મેં ફર્ક હૈ, દોનો મેં ભગવાનને ફર્ક દેખા હૈ, દો જાત અંદર ભિન્ન ભિન્ન હૈ, એક સે કર્મ બનતા હૈ ઓર એક સે શરીર બનતા હૈ, આત્મા ઉસે બનાને વાલા નહીં, ના કર્મ કો બનાતા હૈ ના શરીર કો બનાતા હૈ। प्रश्न पूछते हैं, बाई के बिना हलवा होता है क्या? समाधान, धूल में भी औरत के बिना हलवा होता है, हलवा उसके कारण होता है, औरत से नहीं होता। औरत के आत्मा के परिणाम उसके पास रहे, उसके पास परिणाम रहे, भाव उसका है, उस भाव से क्या हलवा होता है? लोगों को लगता है उसने इच्छा तो की ना, वो बनाने का भाव तो किया ना, वह तो परमाणु के पर्याय उस समय में होने वाली होती है। उत्पाद व्यय परमाणु में होने वाला होता है, वह माने कि मेरे से होता है तो मूढ़ मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? कहते हैं कि इससे यह निश्चित हुआ, कर्म की विचित्रता का बंध क्यों हुआ? 68 पेज पर आना, कि पुद्गल परमाणु का स्वभावकृत है, ये पुद्गल का स्वभाव है। जैसे जीव का भी राग द्वेष उसका स्वभाव में लिया, कौन सा वो अशुद्ध स्वभाव है, परंतु वो जीव की पर्याय में होता है, जीव से होता है, वैसे कर्मरूप होना ये पुद्गल का स्वभाव है। उसमें भी उसको औदयिक भाव कहा है, स्कंद होता है उसको, पुद्गल में भी होता है औदयिक भाव, सुना है कभी? उसका उदय भाव कहा है? इसके स्वभाव से किया गया ऐसा कहते हैं, किंतु आत्मकृत नहीं, अनेकांत लिया किया लो ऐसा कहा, आत्मकृत थोड़ा व्यवहार है ऐसा नहीं है कहा है, व्यवहार क्यों नहीं कहा? यह अनेकांत किया, तेरा परिणाम तू कर, धर्म कर तो तेरा परिणाम तेरे स्वभाव के आश्रय से होता है, पुण्य पाप कर तो विकार तेरे से होता है। क्या कहा? परिणाम स्वयं करता है, धर्म करे तो तेरा परिणाम तेरे स्वभाव के आश्रय से वो धर्म होता है, और पुण्य पाप करता है तो विकार तेरे से होता है, परंतु बंधन जो होता है तो बंधन का छूटना होता है तेरे से नहीं, वो आत्मकृत नहीं। इसे आशाबीर क्या कहा यहाँ पर? धर्म का परिणाम तू करता है तो स्वभाव के आश्रय से होता है, पुण्य पाप विकार है वो तो पर के आश्रय से नहीं, पर का लक्ष्य करके होता है, परंतु बंधन होता है या बंधन से छूटना होता है वो तेरे से नहीं होता। हम कहें स्वभाव का आश्रय करेंगे तो बंधन से छूटेगा, हाँ, पर वो तेरा तेरा परिणाम क्या है? स्वभाव का आश्रय करके वो शुद्ध परिणाम हुए, इतना ही तेरा कार्य है। वो कर्म से छूटने का कार्य कर्म का है, ये कह रहे। देखो, धर्म कर तो तेरा परिणाम तेरे स्वभाव के आश्रय से होता है, ये तो समझ में ही बात। पुण्य पाप कर तो विकार तेरे से होता है, परंतु बंधन जो होता है तो बंधन का छूटना होता है वो तेरे से नहीं, वह आत्मकृत नहीं, वो आत्मा ने नहीं, वो आत्मा ने ना बंद किया ना आत्मा ने उसको छोड़ा, ना निर्जर आत्मा ने किया ना बंध, यानी वो पुद्गल की कर्म की जो बात है, आत्मा से किया गया नहीं, वह पुद्गल की विचित्रता के कारण हुआ है। आहा, ऐसा सबकी श्रद्धा में आ जाए, यह पुद्गल परमाणु उसके कारण से होता है, तो राग द्वेष हर्ष शोक मिट जाए। भाई यहाँ कहते हैं, यानी उसके ये स्वीकार करे तो विकार भी नहीं होगा, क्योंकि ये स्वीकार करने से स्वभाव पर दृष्टि जाती है, तो हम कहेंगे विकार मिटते चले जाएंगे। यहाँ कहते हैं, अंदर पुद्गल कर्म की रचना भी स्वभावकृत होती है, तेरे से नहीं होती। तो यह शरीर की क्रिया, वाणी की क्रिया तेरे से कहाँ से होती है भगवान? ये तो मानता है ना, हमने मंदिर बनाया, हमने पुस्तक लिखी, हमने पुस्तक छापी और हमने इतना दान दिया, सब ये मैंने किया, ऐसा लगता है उसको भगवान। वह तो जड़ की होने वाली पर्याय है, तेरे परिणाम से होती नहीं, और वो जड़ की भी होने वाली है, वो होती वो जड़ से ही होती है। पक्षघात हो तो शरीर चलता नहीं, पक्षघात समझते, पैरालिसिस हेमिप्लेजिया पक्षघात कहते हैं उसको, लकवा बोलते। भाषा नहीं निकलती, वो नीरस्व, वो तो जड़ की दशा है, तुम तो अरूपी आत्मा हो। वो नहीं निकलती तब तो जड़ की दशा लगती, परंतु अभी निकल रही वो भी जड़ की दशा है, और नहीं निकलती वो भी जड़ की दशा है। राग द्वेष करो अथवा आत्मा के धर्म स्वभाव के आश्रय से शुद्धि प्रकट करो, परंतु दूसरे की क्रिया कर सकते हो, ऐसा जड़ चैतन्य की भिन्नता में है नहीं। 69 पेज पर आते
हैं। हाँ, पुणे में गए थे फर्स्ट टाइम, तब यहाँ पर वो कांति भाई रहते थे ना, कांति भाई।
हाँ, वो यहाँ स्वाध्याय में आते थे, वे अरोरा के पास पीछे।
तो वो ऐसे दूर से हमारे विवाही लगते थे।
अभी आवाज कम आ रही है।
उनके भाई के बेटी, हाँ मेरे भाई के बेटे को दी थी, तो वे भाई कहें तो मैंने उस समय उनको बताया था, उसको भी अभी करीबन 30-35 साल हो गए होंगे, कि वो नमस्कार वगैरह के ऐसा, हाँ मैं बोल नहीं सकता, मेरा मौन है ऐसा बोलने में। तो आप ये अभी जो बात गुरुदेव श्री ने बताई ना, वही बात मैंने उस समय, कि तू अगर बोलता है ऐसा समझता है और मैं मौन रखता हूँ, मौन रखना भी मेरा कार्य है, तो तू मिथ्या थी है। वो इतना छोड़ के आया, बोलते मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बोलो। मैं उम्र के 7वें साल से जब मैं समझदार हो गया, हर साल मैं कोई ना कोई तीर्थ क्षेत्र में जाता था, 10 दिन मौन रखता था। ये बात आज तक मुझको किसी ने नहीं
बताया। के पर्व में हर पर्व में जाता हूँ,
यानी अभी यहाँ जो बोल रही ना, यानी मौन रखना ये भी तेरा कार्य नहीं, और बोल तो तेरा कार्य।
नया प्रवचन प्रारंभ करते हैं यहाँ से, 69 पेज पर आते हैं। आप प्रवचन सार गे तत्व अधिकार चाले छे, 187 गाथा पूरी थई। गे एटले ज्ञान मां जानवा लायक वस्तु, ज्ञान का गे ये कहते उसको। एमां अहीं छेल्लो अधिकार एम आव्यो के આ આઠ કર્મની વિચિત્રતા જે બંધાય છે એ આત્મકૃત નથી, પણ કર્મના સ્વભાવકૃત છે. એને આઠ અલગ અલગ કર્મ હૈ, ફિર ઉનકે જો અનુભાગ, સ્થિતિ, ઉનમે જો પ્રદેશો કી સંખ્યા ને પરમાણુ કી સંખ્યા, ઇનકી જો ભિન્નતા હૈ, વો તો કર્મકૃત હૈ. એને કર્મ કે સ્વભાવકૃત હૈ. જ્ઞાનાવરણીય આદિ આઠ કર્મનું બંધન થાય એમાં જીવનો મિથ્યાત્વ અથવા રાગદ્વેષનો ભાવ નિમિત્ત ભલે હો, નિમિત્ત રૂપે ઉસકો હૈ કહી રહ્યા, પણ જે પરમાણુના કર્મની વિચિત્રતાની પર્યાય થાય છે તે સમયે ભિન્ન ભિન્ન મતિશુદ્ધ આદિના આવરણપણે જે પર્યાય થાય એને મતિ જ્ઞાનાવરણ, શુદ્ધ જ્ઞાનાવરણ આદિ, એ પૂદગલોની સ્વભાવકૃત વિચિત્રતા છે, આત્માને કારણે એ છે નહીં. કે પરિણામ તો આત્મા કા એક હુઆ, જો કોઈ મિથ્યાત્વ ઓર કશાય કા પરિણામ હુઆ હૈ, આત્માને એક સમયમાં એક પરિણામ ક્યા, તો કર્મોમાં ઇતની જો વિચિત્રતા વિવિધતા હુઈ હૈ વો કર્મ કે કારણ હુઈ, આત્માને ઉસકો નહીં ક્યા, એ કહે રહે. આત્માને તો અપને પરિણામ ક્યા, બરાબર છે. આત્મકૃત નથી એમ કહ્યું, નિમિત્ત થયું ને, નિમિત્ત થયો તો એમ થયું ને. દેખો એને એ નિમિત્તાધીન દ્રષ્ટિ ઇતની કે અરે નિમિત્ત તો હૈ ના, નિમિત્ત તો હૈ ના કરકે ઉસકો પહેલે મેં પહેલે લાના ચાહતા હૈ. એને પહેલે કર્મ સે હિ હોતા હૈ એ સ્વીકાર નહીં. અરે આત્માને રાગ તો ક્યા ના, ઉસકે બિના થોડે કર્મ કા બંધ હુઆ, એસા દલીલ કરતા. તો કહેતે નિમિત્ત થયું ને, નિમિત્ત થયો તો એમ થયું ને, પોતાને કારણે થયું છે. જો આથી એમ નક્કી થયું કે કર્મોનું વૈચિત્ર્ય અર્થાત કોઈ દાનાંતરાય, લાભાંતરાય, ભોગાંતરાય એમ કેમ કર્મમાં થયું, આત્માનું કંઈ એમાં નિમિત્તપણું છે માટે એવી વિવિધતા, વિચિત્રતા, અનેકતા, કર્મમાં એવી સ્થિતિ, રસના રસ એને અનુભાગ, અનુભાગના પ્રકારો પડ્યા. તો કહે છે ના, એ કર્મોની વિચિત્રતા સ્વભાવકૃત છે, એ પરમાણુમાં એ સમયે જે પર્યાયપણે પરિણમવાની લાયકાતવાળા હતા એ જ પરમાણુ ત્યાં પોતાના સ્વભાવથી જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, આયુષ્ય આદિપણે થયા. એ પરમાણુ કે અપની યોગ્યતા, ઉનકી અપની શક્તિ સે વિવિધ રૂપ સે વો અલગ અલગ કર્મ રૂપ સે પરિણમિત હુએ, પરંતુ આત્મકૃત નથી. એ સ્વભાવકૃત કર્મ કે સ્વભાવકૃત હૈ, આત્મકૃત નહીં હૈ, ઇસકો અનેકાંત કહે. અરે થોડા ઉસે ભી હુઆ થોડા નહીં, વો અનેકાંત નહીં હોતા હૈ. હા, આઠ કર્મની વિચિત્રતાનો બંધ એ આત્માનું કાર્ય નથી, આત્માએ કરેલું નથી. અહીં વાંધા પડે છે, નિમિત્ત છે માટે થયું ને, એને જો નિમિત્તપણું ન આપ્યું તો તે સમયે ત્યાં આઠ કર્મ કેમ થાત, રાગ દ્વેષ ન હોત તો ત્યાં કર્મની પર્યાય થાત. મુમુક્ષુને કુછ કહા બીચ મેં, ગુરુદેવશ્રી બોલતે હૈ બસ રાગ દ્વેષ થયા તો ત્યાં કર્મની પર્યાય થઈ. એમાં ભૂલ છે કે અહીં રાગ દ્વેષ થયા માટે થયું એમ નથી, અને રાગ દ્વેષ ન હોત તો ન થાત, આને કારણે ન થાત એમ છે નહીં. તે તો જ્યાં એને આત્માના સ્વભાવને ભૂલીને જેટલા પ્રમાણમાં વિકારની પરિણતિ કરી તેટલા પ્રમાણમાં જ ત્યાં કર્મ બંધાય, છતાંય આત્માનું કાર્ય નથી. એને ઉસી પ્રપોર્શન મેં બંધે એ તો નક્કી હૈ, કૌન સે રાગ સે કૌન સે કર્મ બનતે, કૌન સે જીવો કો કૌન સે બનતે, કૌન સે ગતિ વાલો કો, એ સબ નક્કી હૈ, ફિર ભી ઉનસે નહીં બનતા. એ કહે ક્યા કહેતે કે જ્યાં એણે આત્માના સ્વભાવને ભૂલીને જેટલા પ્રમાણમાં વિકારની પરિણતિ કરી તેટલા પ્રમાણમાં જ ત્યાં કર્મ બંધાય, ફિર ભી છતાંય આત્માનું કાર્ય નહીં. એ સ્વભાવકૃત છે, એ પરમાણુમાં જ એવી પર્યાયમાં અનંત પૂદગલ પડ્યા છે, એમાંથી જે પરમાણુમાં જ્ઞાનાવરણીય થવાને લાયક હતા તે ત્યાં પરિણમ્યા, બીજા દર્શનાવરણીયપણે પરિણમ્યા, કોઈ વૈજ્ઞાનિકપણે, કોઈ આયુષ્યપણે પરિણમ્યા, એ પર્યાયનો એનો પોતાનો સ્વભાવકૃત ધર્મ છે. આત્માનું નિમિત્ત છે માટે એનાથી ત્યાં વિવિધતા આવી છે એમ છે નહીં. तो देवानुप्रिया
प्रेरक, देवानुप्रिया लड़की का नाम?
नहीं नहीं, कोई साउथ इंडियन देवानुप्रिया नाम का कोई नाम है
व्यक्ति, जेंट्स थे कि लेडी?
जेंट था।
प्रिया थोड़ी होता है, प्रिय होता है।
नहीं नहीं नहीं, देवानुप्रिया नाम होगा उसका, लेडीज को नहीं बोलते। और दूसरी बात, साउथ इंडियन कोई नाम होना चाहिए। प्रेरक निमित्त कहता जेनाती कहीं थयू नथी एम ही कहे छे, एम कहे छे कि उदासी निमित्त हो तो कहीं नहीं, पर आ तो प्रेरक निमित्त छे, समझा ने? प्रेरक क्यों कहा इसको? नहीं नहीं, प्रेरक किसको कहेंगे, उदासीन किसको कहते हैं? नहीं बोलो, याद है? इच्छावान और क्रियावान द्रव्यों को प्रेरक कहते हैं। हाँ, जिसमें क्रिया भी नहीं इच्छा भी नहीं, वो सारे उदासीन निमित्त। उदासीन हो या प्रेरक हो, पर द्रव्य में कुछ नहीं करते, ये कहना चाहते। केवल छह द्रव्यों में विभाजित करने के लिए बताया, इच्छावान और क्रियावान में जीव और पुद्गल ले लेना है। जीव तो दोनों है, इच्छावान क्रियावान, और पुद्गल तो क्रियावान है, इसलिए उनको लेना है प्रेरक में। हाँ, दोनों कुछ नहीं करते। यहाँ लिखा है ना, प्रेरक निमित्त केता जेनाती कहीं थयू नथी एम ही कहे छे, एम कहे छे कि उदासी निमित्त हो तो कहीं नहीं, पर आ प्रेरक, आ तो प्रेरक निमित्त है, समझा ने? जीव है ना, ये राग द्वेष कर रहा है तो प्रेरक निमित्त है। हाँ, प्रेरक निमित्त हो कि उदासीन हो, पर परमाणु नहीं नहीं, प्रेरक है, हवा है ना, हवा क्रियावान है ना, पुद्गल में सब में वो प्रेरक ही लगाना। क्या कहते हैं, प्रेरक निमित्त हो कि उदासीन हो?
आप जरा प्रेरक निमित्त के बाद दोबारा
देखो, देखो
इन विविधली
हम दोबारा कहते हैं, निमित्त के दो प्रकार बताएंगे, प्रेरक निमित्त और उदासीन निमित्त। प्रेरक निमित्त किसको कहेंगे, तो जो निमित्त जिसमें इच्छावान द्रव्य है और क्रियावान द्रव्य है। जीव अभी समझदारी जीव को लेना, इच्छा वाले है, जैसे गुरु ने शिष्य को पढ़ाया तो गुरु को निमित्त कहेंगे, तो कौन सा निमित्त कहेंगे उनको? प्रेरक निमित्त के। अभी वो हवा से ध्वजा लहरती है पर, तो उसको भी प्रेरक निमित्त कहेंगे। वो लाइट के नीचे बैठकर हम पढ़ते हैं तो कौन सा कहेंगे उसको? प्रेरक, वो पुद्गल है ना, प्रेरक निमित्त कहेंगे उसको। अब धर्म अधर्म जो है, गति में निमित्त स्थिति में, उसको हम उदासीन निमित्त कहेंगे। बाकी जो चाहे धर्म अधर्म आकाश और काल, ये जो निमित्त है वो कैसे निमित्त है, तो उदासीन निमित्त है।
शास्त्र में धर्म को अधर्म को आकाश को काल को निष्क्रिय द्रव्य कहा है। किस अपेक्षा से, ये क्रियावती शक्ति जो है वो पुद्गल और जीव में है, इसलिए जहाँ जहाँ पुद्गल निमित्त है वो प्रेरक निमित्त गिना जाएगा।
हाँ, ये चार द्रव्यों के लिए उदासीन, जीव और पुद्गल जहाँ जाए उसको प्रेरक। हाँ,
वो बचपन में हम जब गांव में थे तो घर में लाइट नहीं थी, जाती थी रास्ते के ऊपर लाइट होती थी, उसके नीचे जाके बैठ के पढ़ते थे, तो कौन सा निमित्त है? यही बात निमित्त उपादान नामक जो पुस्तक है उसमें गलत लिखे है।
ये तो माइलस्टोन के लिए वो कुछ ऐसा ही लिखा है। चलो ठीक है, हम यहाँ पढ़ते आगे, फिर से पढ़ूंगी मैं। प्रेरक निमित्त कहता जेनाती कहीं थयू नथी एम ही कहे छे, एम कहे छे कि उदासीन निमित्त हो तो कहीं नहीं, एक लोग कहते हैं, पर आ तो प्रेरक निमित्त छे, समझा ने? प्रेरक निमित्त हो कि उदासीन हो, पर परमाणु ना काल में जे परमाणु मति ज्ञानावरणीयपणे परिणमवाना एना स्वभावकृत एनो भेद छे, ए समयनो ए पर्याय तेमा थवानो काल हतो अने थयो छे, આત્માના કારણે કે રાગને કારણે થયું નથી ત્યારે એને સ્વભાવકૃત કહેવામાં આવે છે, નહીં તો એ આત્મકૃત થઈ ગયું, પ્રેરક થયું અને એને એ પ્રમાણે કર્મમાં, આઠ કર્મમાં સ્થિતિને રસ જીવના નિમિત્તના કારણે થયું તો સ્વભાવકૃત થયું નહીં, આત્મકૃત થઈ ગયું. એ પરમાણુઓ જ અનંતા એવા છે કે જે પરમાણુમાં મતિને પરિણમવાની લાયકાતવાળા મતિપણે પરિણમે, એને મતિ એની મતિ જ્ઞાનાવરણ શ્રુતની આવરણવાળા હો એના પણે પરિણમે, દાનાંતરાયના એ પણે પરિણમે. તે સમયમાં એક પરમાણુમાં અનંતામાંથી જે પરમાણુની લાયકાત એ સમયે પરિણમવાની હતી તે પરમાણુ પરિણમ્યા છે. પ્રત્યેક પરમાણુ અપને સે પરિણમિત હુઆ હૈ, વો ઉસકી યોગ્યતા સે ઉસકી લાયકાત સે પરિણમિત હુઆ હૈ. છેલ્લો શબ્દ કહી દીધો, કર્મોનું વૈચિત્ર્ય સ્વભાવકૃત છે પરંતુ આત્મકૃત નથી. લ્યો એ પ્રેરક કહો કે ગમે તે કહો, પણ એનાથી કરાયેલું નથી. હવે એકલો જ આત્મા બંધ છે એમ સમજાવે છે. પ્રશ્ન, જીવે વિકાર કર્યો એટલે એને કરવું પડ્યું નહીં? એને વારંવાર વહી પ્રશ્ન ઉઠતા હૈ ફિર એસા તો હે ના, ઉસકે બિના થોડા હી હોતા હૈ. સમાધાન, ના ના, એ માટે તો વાતને છંછેડી આમને પૂછી. એ પ્રશ્ન સંવત 2006 સાલમાં રાજકોટમાં ખૂબ થયો હતો. ગુરુદેવ બી સમજતે થે કે જાનબુજ કરે પ્રશ્ન કરે. એ લિખા ને, એ વાતને આમને છંછેડી આમને પૂછી. જીવે અહીંયા રાગદ્વેષ કર્યો તો ત્યાં કર્મને થવું પડ્યું ને, રાગદ્વેષ ન કરે તો ન થાત ને? બિલકુલ વાત ખોટી છે. હું શું કહેતે, ડિગ્રી ટુ ડિગ્રી હોય. ગુરુદેવશ્રી કહેતે એ ડિગ્રી ટુ ડિગ્રી વળી પછી એ તો કર્મના ઉદયકાળે આની કોર ડિગ્રી હોય, પણ અહીંયા રાગદ્વેષના પરિણામ કર્યા તો કર્મની પર્યાયને એમ થવું પડ્યું ને, એ વાત જ જૂટી છે. એ જ અહીં સિદ્ધ કરે છે. એને હું ઉસ્કારણ રાગ કે કારણ હું બનતા એ વાત ખોટી, હું તો ઉસકા આપના પરિણામે મને સેવરાય. જેટલા પ્રમાણમાં પોતાના ભાવબંધને જીવ રાગ અને દ્વેષના વિકારી ભાવને જીવ કરે, કર્મનું બંધન થાય કર્મના પરમાણુઓમાં, ભિન્ન ભિન્ન પરમાણુમાં તે સમયે જે પ્રકારની પર્યાયની વિચિત્રતા થવાની હોય તે જ પરમાણુ ત્યાં પરિણમે છે, એ એનો સ્વભાવ ભેદ છે. પરમાણુના સ્વભાવ ભેદને લઈને એ કર્મની વિચિત્રતા છે. આત્માના નિમિત્ત ભેદને લઈને વિચિત્રતા છે એમ નથી. જીની વાત બાઈ, એ સમયે આયુષ્ય બંધાય, અહીંયા ભવના કારણરૂપ ભાવ કર્યા તો આયુષ્ય બંધાનું ને? તો તે ના, કે એ વાત આપને સુની હોગી, આયુ બંધ કે પરિણામ વિશિષ્ટ કાલ મેં હોતે, અપકર્ષ કાલ કહેતે ઉસકો. સુનાય કે નહીં સુના? જૈસે કર્મભૂમિ કે મનુષ્ય તિર્યંચોં કો કબ બનતી હૈ, તો જો પૂરી આયુ લેકર આયા હૈ, વો તો પૂર્વભાવ મેં બાંધી હતી, ઉસકે દો તિહાઈ બીત ગયા, યાની 2/3 બીત ગઈ ઓર 1/3 બાકી હૈ, વહાં એક અંતર્મૂળ તક ઉસકા બંધ હોગા, ઉસકો કહેંગે અપકર્ષકાલ. વહાં લેશા કે મધ્યમ પરિણામ પાએ જાતે, ક્યોંકિ એસી બાત હૈ, અતિ તીવ્ર સંકલેશ મેં ઓર અતિ મંદ સંકલેશ વિશુદ્ધિ મેં, અતિ જો વિશુદ્ધિ હૈ ઉસમે આયુ કા બંધન નહીં હોતા, મધ્યમ પરિણામ મેં હોતા હૈ. તો એસા અવસર કબ આતા હૈ જીસકો અપકર્ષકાલ કહેતે, અપકર્ષકાલ. તો એ 2/3 1/3 કા હિસાબ બતાયા. દેવો મેં, નારકીઓ મેં ઓર ભોગવન મેં ક્યા હોતા હૈ, જો અંતિમ 6 મહિને આયુ કે ઉનકે અંતિમ 6 મહિને હૈ, તબ પહેલી વાર આયુ કા બંધ કા અવસર આતા હૈ. બાદ મેં 6 મહિને કે ત્રિભાગ ત્રિભાગ કરતે જાઓ, યાની એસે 8 ત્રિભાગ હોતે હૈ, હોતા હોતા ના, પરંતુ વો 2/3 1/3 2/3 1/3 એસા, યાની વો 6 મહિને કા ત્રિભાગ ત્રિભાગ નહીં હૈ, પૂરી આયુ કા ત્રિભાગ ત્રિભાગ. 2/3 બીત ગયા, 1/3 બાકી હૈ, તભી આયુ કા નહીં ભી પડે, એસા હો સકતા હૈ. ફિર દોબારા જબ અવસર આયેગા તબ ઉસકા આયુ કા બંધ હો સકતા હૈ, એસે 8 અવસર આ સકતે હૈ. किसी का एक बार में, किसी एक अवसर में आयु का बंध हो सकता है, किसी का किन्हीं दो में होता है, किसी का तीन, किसी के आठों बार मिलकर आयु के परमाणु ग्रहण करता है। और वो जो स्थिति है, वो जो मैक्सिमम बंदी उतनी स्थिति, उसमें सारे परमाणु उसके निषेक बन जाते हैं। ऐसा नहीं कि पहली 100 साल की बांधी बाद में 20 साल की बांधी तो 120 नहीं होती है, वो 20 साल के निषेक भी 100 साल के निषेक में जा अंदर, वो उसी के अंदर चले जाते। ख्याल में आई ना बात? नहीं आई? क्या नहीं आया? हाँ देखो, वंथर त्रुतर का अर्थ समझते हैं। मान लेते 81 की आयु लेकर आया है तो 54 वर्ष पूरे हुए उसके, अभी 27 साल बाकी है उसके, उम्र के 27 साल बाकी है। तो 27 साल के पहले अंतर्मुहूर्त में आयु बंध का अवसर आता है। आयु बंधेगी ही, जरूरी नहीं है किसी के नहीं भी बंधेगी, किसी के बंधेगी। अभी तो आयु बंधी या नहीं भी बंधी, अब दोबारा कब बंधने का अवसर आएगा? 27 के में से 18 चले गए, 9 बाकी है, यानी 72 वर्ष का हुआ वो, 9 बाकी है ना अभी 81 के लिए, तब उसका आयु बंधने का अवसर आया। तब बंधे या नहीं भी बंधे, फिर 9 साल के 2/3 1/3 करना, 6 बीत गए 3 बाकी है, यानी 78 साल का पूरे हो गए उसके, तब उसने आयु बांधी उसने या नहीं भी बांधी, उसका अवसर कब आता है उसकी चर्चा है। फिर उसे 3 साल का वंतर, 1 साल बाकी है, फिर उसका वंतर वंतर ऐसे 12 महीने ना, तो उसमें 8 चले गए, 4 महीने बाकी है, फिर 4 महीने ने 120 दिन हो जाएंगे, तो उसके फिर 80 गए और 40 दिन बाकी है, फिर उसका वंतर, इस तरह से 8 बार आपको काउंट करना।
लेकिन थोड़ा थोड़ा लिया तो एक साथ हो सकता है?
कैसे कैसे?
पहली बार में थोड़ा परमाणु
परमाणु तो हर समय तो हर बार थोड़े थोड़े लेगा और सब आयु के निषेक बनेंगे, पर स्थिति कौन सी कहलाएगी उनमें से? नहीं नहीं, जब जो मैक्सिमम है तब, वो पहली बार बंधे या अंतिम बार बंधे। 120 साल की आयु बांधी मान लेते, भी कोई भी आयु ले लो ना, तो वो नक्की हो जाएगी ना उसकी। और फिर कभी 80 साल बांधे, वो नहीं काउंट करेगी, वो 80 साल बांधे वो 120 साल के जो निषेक है उसमें मिल जाएंगे। ख्याल में आई बात? है यानी दूसरी बार कम आयु बांधी तो आयु कम नहीं होती। अरे होगी या नहीं होगी क्या फर्क पड़ता है? हाँ ऐड हो जाती है, क्योंकि आयु बंद की बात आती है तो बहुत चौकन्ना होता है, अरे हर समय बंद रहे कर्म प्रमाण। अरे नारकी की भी ऐसी बंधेगी ना, कृष्ण लेशे की उत्कृष्ट उत्कृष्ट अंश नहीं था, सैनिक ने भी 33 सागर की नरकायु बांधी, तो अति संकलेश ऐसा नहीं था। अति संकलेश देखो देखो, अति संकलेश कब कहेंगे? जब मिथ्यात्व का 70 कोड़ाकोड़ी का बंद कर रहा है, ज्ञानावरण का 30 कोड़ाकोड़ी का, जब आयु बनती है तब इतने तीव्र यानी इतनी मैक्सिमम उसके अन्य कर्मों में इतनी स्थिति नहीं बन रही है। मध्यम परिणाम का अर्थ क्या है? तब बाकी कर्म इतने तीव्र अनुभव वाले नहीं बन रहे।
अशुभ बन गई थी
किसकी? कभी बंदी मिथ्या तो अवस्था में आयु का बंद किया था, फिर बाद में उसने सम्यक तो प्राप्त किया। अभी उसने दोबारा आयु बांधी कि नहीं बांधी? कैसे बांधी? कौन सी बांधी? नरकायु समय दर्शन होने के बाद नहीं, उसने फिर आयु नहीं बांधी। देखो सम्यक तो के बाद नरकायु बनती नहीं, यानी उसका उसने फिर दोबारा आयु का बंधन नहीं किया। समय दर्शन होने के बाद देखो, अगर देवायु बांधी होती किसी ने मिथ्यात्व अवस्था में, बाद में समय दर्शन होता तो दोबारा आयु का बंद कर सकता था, क्योंकि देवायु के साथ देवायु बांधनी है ना उसको। जो आयु पहले बंधी वही बंधेगी फिर, पर अभी ये सम्यक तो प्राप्त किया तो अभी नरकायु तो नहीं बांध सकता वो, परंतु उसकी आयु घट कैसे गई? उसको कहेंगे घातायुष्क, परिणाम के कारण बंधी हुई आयु घट सकती है आगामी भव की।
बढ़ भी
नहीं, बढ़ने के लिए परिणाम के कारण नहीं बढ़ती, उसके लिए नया बंध होना चाहिए बढ़ने के लिए। उस देखो अभी किसी ने देवायु बांधी, कितनी एक सागर की बांधी, फिर उसके परिणाम सुधर गए, यानी उसने सम्यक तो प्राप्त किया, और फिर अभी देवायु फिर बांधी और उसने 10 सागर की बांधी, तो उसके 10 सागर की देवायु होगी। बढ़ने के लिए, उत्कर्षण के लिए उसको नया बंध आवश्यक है, घटने के लिए उसके परिणाम सुधर गए तो घट सकते हैं, पर परिणाम सुधर गए ये नरकायु घट सकी, परिणाम सुधर गए तो नरकायु घट गई श्रेणी की। अब कोई किसी ने देवायु बांधी और परिणाम बिगड़े, मान लेते 1000 सागर की बांधी थी, परिणाम ऐसे बिगड़े कि 10000 वर्ष की हो गई। बढ़ने के लिए नया बंध आवश्यक है, अधिक बंध करेगा तो ही बढ़ेगी। पहले जितनी स्थिति बांधी है उससे अधिक स्थिति बांधेगा तो ही बढ़ सकती है, केवल परिणाम से बनती नहीं, बढ़ती नहीं है, मात्र परिणाम से घटती है, बढ़ती नहीं है। क्या क्या किसी ने 1 सागर की बांधी थी, बाद में उसके परिणाम सुधर गए, हो सकता है ना, पर उसने दोबारा आयु बांधेगा तो, हाँ ऊपर की बांधी थी, हो सकता है, हाँ अरे सर्वार सिद्धि की भी बांध सकता है, हाँ कम होने के लिए बंधने से कम होती नहीं है, परिणाम से घट सकती है, भले देवा 8 की बात, 8 बार नहीं 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 सारे जो परमाणु आगामी आयु के 8 में मिलकर उसने ग्रहण किए, फिर स्थिति कौन सी नक्की हो जाएगी, जो मैक्सिमम उसमें से वो स्थिति नक्की हो जाएगी, ऐसे नहीं कि पहले 100 और फिर 20 120 नहीं हो जाएगी, जो हाईएस्ट होगा वो, क्योंकि जितने निषेक बने ना हाईएस्ट के उसमें बाकी भी स्थितियाँ उसी में चली जाए हो जाती है। बढ़ने के लिए नया बंध अधिक स्थिति वाला होना चाहिए, पर आयु के बंध के समय के परिणाम से, हाँ ऑर्डिनरी परिणाम से, परिणाम से विशुद्धि कमी, हाँ 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 अरे उस समय के परिणाम काउंट करते हैं, आयु बंध के समय वो हमको मालूम नहीं ना कब होगा और क्या होगा, वो तो पहले भव में बांधे, वो तो बढ़ने का चांस नहीं है, हाँ मनुष्य और तिर्यंच जो है कर्म भूमि के, घटने का नहीं, कदली घास से वो मरण उसका हो सकता है ये तो मालूम नहीं ना। और देखो किसी का छोटी आयु में मरण हुआ तो जरूरी नहीं वो कदली घास से मरा, किसका, नहीं 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 उसकी बात नहीं मैं कर, मैंने किसी का मुझे वो उनका विचार भी नहीं आया, परंतु तो वो हो सकता है उतनी आयु लेकर आया है, ये कोई अपघात हुआ को, हमको ऐसा लगता ना अरे वो एक्सीडेंट से मरा है या किसी ने बंदूक से उसको गोली मार के उड़ा दिया तो कतली घात से मरा होगा, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसी निमित्त से उसका इतना छोटी आयु ही बांध कर आया था और ऐसे मरना था, ये भी हो सकता है, और कदली घात से मरने वाला अधिक आयु बांध के आया था परंतु उसका कदली घात होकर वो मर गया, ये तो हम आप नहीं कह सकते, ये तो केवल ही भगवान जान सकते हैं, फिक्स ही होता है, सब कुछ नक्की है, उसका निमित्त भी निश्चित है, हाँ वो सब सब, हाँ अरे कदली घात होना है तो वो भी फिक्स है, हाँ यानी किसी को हम ऐसा कह नहीं सकते कौन सा कदली घात से मरा और कौन सा उनके अपने उतनी आयु बांध के आया था, वो तो केवल ज्ञानी का केवल ज्ञान गम्य, अवधि ज्ञानी अभी कोई बहुत परमाणु को जानने वाले है वो जान सकते हैं, मगर उन्होंने पहले जाना था और फिर बाद में ऐसा हुआ तो ही कह सकते हैं, मगर वो तो रेयर बात है, यानी आज के काल में तो कोई नहीं कह सकेगा। हाँ
कल जो हमारा संडे का जो क्लास हुआ था उसमें यही बात निकली थी।
हाँ, कल संडे को यही बात निकली थी,
शुरू शुरू में है।
देखो लक्ष्मी को याद होगा, हमने देखा था ये कद्दीघात की बात आई थी, देखो अपने प्रवचन में धवला जय धवला कहीं तो वो वहाँ जलचर का उदाहरण दिया था, किसी ने करोड़ पूर्व की आयु बांधी वो जलचर हुआ, यानी वहाँ आयु के परमाणु मैक्सिमम कहाँ वो उसकी चर्चा, वो डिटेल में हम नहीं जाएंगे, तो पर्याप्ति पूरी हुई और उसने कद्दीघात किया, कद्दीघात ने मान लेते नहीं, इतने निषेक पड़े थे आयु के, तो उसमें से अभी पर्याप्ति पूरी होने कितना एक अंतर्मूर्त बीत गया और करोड़ पूर्व के सारे परमाणु निषेक पड़े हैं, वो पहले कद्दीघात होता है ना क्या, वो सारे कट डाउन हो जाते हैं और नीचे के थोड़े यानी यहाँ से थोड़े निषेक बचते हैं, मान लेते हैं ना एक एक सेकंड या एक मिनट वाले निषेक बचेंगे, यानी ये सारे परमाणु वो मिनट वाले जितने समय उसमें सारे परमाणु आ गए, यानी एक कद्दीघात हुआ, एक समय में होता है ये, थोड़ा थोड़ा आता है ऐसा नहीं, ये एक समय में कट डाउन होकर नीचे आया, अभी उसके बीत कितने गए जो अंतर्मूर्त बीत गया है, अभी जो रिमेनिंग है वो उससे छोटा है, यानी टू थर्ड वन थर्ड पे हाँ उसमें आ गए सब, यानी बहुत अत्यंत थोड़े बाकी है, अब वो यहाँ आयु का बंद करेगा अंतर्मूर्त तक, केवल कद्दीघात से हमारा ऐसा नहीं है, कद्दीघात तो उसी का होता है जिसका आयु का बंद नहीं हुआ है, क्योंकि जिसने आयु का बंद किया है उसके आबादा नक्की हो गई है, उसके पहले वो मर नहीं सकता, आपका 81 आयु मैंने उदाहरण दिया ना, जिसने 54 साल बीतने पर आयु का बंद किया है, अभी उसके 27 साल बाकी है, अभी वो कैसे भी उसके ऊपर संकट आए, कैसा भी एक्सीडेंट हो जाए, वो मरेगा नहीं क्योंकि उसने आयु का बंद किया है ये नियम है सारे उसके। अरे कहाँ जाना है, टाइम हो गया ना, हाँ अभी है थोड़ा, देख तो पढ़ लेते, पूज्य गुरुदेव श्री कहते ना,
कौन सा पेज पढ़ रहे हैं,
71
अभी है 5 मिनट,
कौन सा पैराग्राफ चल रहा था, ए समय आयुष्य बंधा है, यहाँ भवना कारण रूप भाव कर्या तो आयुष्य बंधानु ने ना, ये हो गया था, तो पहला केम ना बंधानु, समाधान पहला ए समय बंधावाना परमाणु नी योग्यता हती, अहीं जीव मां आयुष्यना भावनी योग्यता होय, एटले के भविष्यमां ज्यां जवुं छे ते आयुष्यनी योग्यता होय, अने अहीं परमाणुमां ए प्रकारना पोताना परमाणुना स्वभावने कारणे त्यांथी देवलोकना आयुष्यनुं कर्म बंधावानुं होय, ए ज परमाणु त्यां परिणमे आत्माना भावना कारणे नहीं, यानी वैसे ही परिणमते हैं जैसा भाव है, परंतु फिर भी वो भाव के कारण नहीं होते, निमित्त ने उपादान ना मोटा झगड़ा छे, हवे एटलोज आत्मा बंद छे एम समझावे छे, एकलोज आत्मा बंद छे एम समझावे, देखो कर्म तो निमित्त मात्र छे, कर्मनु बंधन जीवने छे, ए असद्भूत व्यवहार नहींथी कथन छे, झूठा नहींथी कथन छे, गुरुदेवशी कहते एटलोज बंद थया करे छे, आ स्वभाव अने विकार बे थया तेनुं नाम बंद थयुं, एकमां नथी थतो, पोतानो त्रिकाल शुद्ध स्वभाव अने विकारनुं थवुं तो बे थई गया, अने कर्मनो बंध छे ए तो अहींया जरी अशुद्ध ने एने कहेवामां आव्यो छे, अशुद्ध ने से कहावुं व्यवहार ने से कही दिया, कारण के परवस्तु छे ने, पोतानो जे बंध छे ते शुद्ध नये बंध छे, क्या कहा, बंध ने दो चीज में होता है, किसमें, स्वभाव त्रिकाली और विकार, यानी जीव के लिए बंध कौन सा है, उसी के विकारी परिणाम, जो कहते ना जीव के जो भाव बंध किसको कहेंगे, शुभाशुभ परिणाम होते हैं उसी में अटकता है जीव, निश्चय थी पोतानो जे बंध छे ए शुद्ध नये थी पोतामा विकारपणे बंध छे, शुद्ध ने क्यों कहा, वे सो में ही लेना है उसको, अने बंद कर्मणो बंद छे ए अशुद्ध नहीं, एटले के असद्भूत व्यवहार नहीं थी એને કર્મનો બંધ ગણવામાં આવે છે. શુદ્ધને અપની પર્યાય મેં લિયા ઓર કર્મ કા બંધ જો પર કે સાથ જો બંધ લિયા ઉસકો અસદભૂત વ્યવહાર નહીં સે કહેને મેં આયા. અભી હમ કલ એ નઈ ગાથા વગેરે પઢેંગે.
મુઝે કુછ બતાના થા. હા, અગર આપકી પરમિશન હો તો. દેખો યે
અચ્છા આપકો કુછ બતાના. અચ્છા,
નિમિત્ત ઉપાદાન નામ કી પુસ્તક ડોક્ટર હુકમચંદ જી ભારી ને લિખી હૈ. ઉસમે પેજ નંબર 18 પે ઈચ્છા શક્તિ સે રહિત એવમ નિષ્ક્રિય દ્રવ્ય ઉદાસીન નિમિત્ત ઓર ઈચ્છાવાન ઓર ક્રિયાવાન દ્રવ્ય પ્રેરક નિમિત્ત હૈ. इन्होंने बिल्कुल सही बताया, लेकिन उसके पहले 17 नंबर के पेज पर अरे 17 नंबर के पेज पर यहाँ पर ऐसा लिखा है, उदासीन निमित्त भले ही कुछ न करते हो पर प्रेरक निमित्त तो सब कुछ करते ही है. छात्रों के अध्ययन में अध्यापक, पुस्तक और दीपक, ये तीनों ही निमित्त है. अभी आप उन्होंने जो सामने में आपने को जो परिभाषा सिखाई है, इच्छावान और क्रियावान, तो अभी क्रिया किसमें है? दो द्रव्यों में है. अभी क्या कहते हैं, देखो, छात्रों के अध्ययन में अध्यापक, पुस्तक और दीपक, ये तीनों ही निमित्त है. पर अध्यापक प्रेरक निमित्त है और पुस्तक व दीपक उदासीन निमित्त है. मैंने जाकर उनसे पूछा, भैया ऐसा कैसा, बाद में बताता हूँ, बाद में बताता हूँ. यानी उनकी भी यहाँ लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है. एक्चुअली पुस्तक भी पुद्गल है और दीपक भी पुद्गल है, उसमें क्रियावती शक्ति है, तो वो भी प्रेरक निमित्त गिना जाए. उन्होंने लिखा उदासीन निमित्त. जावानी
के ज्ञान से तुझे लो कालो सोवाणी मस्तकन
सदा देत हो. લક્ષ્મી